ओम शांति। कल की मुरली करो याद, नशा रहना चाहिए। मैं बीच से पूछा, क्या नशा रहना चाहिए? हम बोलो, ठीक बोल रहे हैं लेकिन पूरा बोलो। नशा रहना चाहिए, हम भगवान के दिल तक नसीन हैं। बड़ा नशा है ये भी, लेकिन ये सबकी समझ में भी नहीं आता। क्या है दिल? भगवान को दिल कहाँ से आया? वो तो निराकार है। क्या अर्थ है इसका? उसके दिल को जीत लिया, उसके दिल को जीत लिया। हम चर्चा करेंगे कौन उसके दिल को जीतते हैं। तीन तख्त दिए हैं बाबा ने संगम पे। अब तो सहज हो गया, बोलो। कल एक और तख्त भी बताया, दिल बाप का। बोलो, आप तो ऐसे इतनी जल्दी भूल गए तो आगे क्या होगा? बाप का है, बोलो ना। तिल तख्त क्यों ठंडी हो गई कन्या सब? दूसरा वो तीसरा है, दूसरा मैं भी सोचा था ये किसी को ही याद रहेगा, मुश्किल से। प्रकृति तख्त नसीन, तीसरा है भविष्य। जो जितना लंबा समय किसके तख्त पे बैठेंगे? बाप के दिल तख्त पर नसीन होंगे, उतना ही लंबा समय। पीछे वाले बोलो, पता ही नहीं क्या होगा, राज करेंगे लंबा समय। उसमें भी जोड़ा बाबा ने, जब से ज्ञान में आए हैं तब से लंबा समय। ताकि कोई ये ना कहे हम तो एक साल से ज्ञान में आए हैं, लंबा समय कहाँ से आया? लंबा समय जब से ज्ञान में आए हैं। भगवान के दिल को जीता है। आगे चलो, सेवा का एक विशेष काम दिया। वाचा की सेवा तो करते ही हो, और बोलो एक और शब्द बोला, सुख शांति और नाई प्रेम। इन तीनों के वाइब्रेशंस फैलाओ। प्रेम की भी संसार को बहुत जरूरत है। प्रेम खत्म होता जाता है दुनिया से। किससे प्यार हो गया? मोबाइल से। ठीक कहा, वो भी बहुत बड़ी माया है। कितनी माताएं बेचारी हर ग्रुप में आती हैं, बच्चा मोबाइल पे लगा रहता है, न पढ़ता, तबीयत खराब हो रही उसकी, परेशान होता है, फिर भी छोड़ता नहीं मोबाइल से प्यार। पहले मनुष्य का विकारों से प्यार था, वो तो अब भी है, लेकिन अब ज्यादा प्यार हो गया धन से। धन ही सब कुछ है। कोर्ट में इसके केस बढ़ते जा रहे, भाई भाई का झगड़ा, भाई भाई को धोखा दे रहा है, उल्टे केसों में फंसाए जा रहे पैसे के लिए। जमीन उनकी थी मिलजुल के, आजकल तो पैसा देने का जमाना है, पैसा दिया अपने नाम करा ली, अब बेचारे मुश्किल में आ गए। पैसे से प्यार, महात्मा गांधी ने इंग्लिश में एक कहावत कही थी, जो अंग्रेजी जानते हैं, मैं अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा। यदि स्वास्थ्य गया, पहला भी था कुछ, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गई, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस्ट, पहला भी था कुछ, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, धन चला गया तो नहीं कुछ नहीं गया। हाँ चरित्र, अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो हम सभी को बाबा के दिल तख्त नसीब बनना है। दो तरह से माया आ रही है, बोलो, यह संकल्प और अहम की बात है, वो मैं राइट हूं, मैं कम थोड़ा ही हूं, मैं जो सोचा जो किया वो राइट है, तुम सब गलत, केवल मैं राइट। ये दो तरह की माया, उस टाइम कोई बैठे होंगे सभा में सबने सामने जिनको देखकर बाबा ये बोल रहे थे। व्यर्थ पे तो क्लासेस चाहे जितनी हो जाएं, व्यर्थ तो बढ़ता ही जाता है। जैसे मैं एक चीज देखता हूं, चाहे योग पे कितनी भी क्लासेज हो जाएं, फिर भी बहुत सारे लोग उनमें माताएं ज्यादा आती हैं, योग कैसे लगाएं? चाहे 100 क्लास करा लो, फिर भी वो पूछेंगे योग कैसे लगाएं? कुछ ऐसा भी कहेंगे हमारा तो योग लगता नहीं। मैं तो हंसी में कह देता हूँ चलो तुम्हारे लिए मैं लगा लूंगा। एक बार बाबा ने भी कहा था हंसी में, कई बच्चे तो ऐसा सोचते हैं हमारे लिए योग भी बाबा ही लगा ले, कुछ न करना पड़े, फिर तो बाबा को सब कुछ मिलेगा। अमृत वेले क्या करते हैं बाबा? चक्र लगाते हैं और क्या देखते हैं? याद करो, आज से याद रखना, सवेरे सोते रहें तो याद रखना भगवान आ गया है और देख रहा है कि चारों सब्जेक्ट में कैसे हैं। कभी बाबा कुछ देखता है, कभी कुछ देखता है। कल ये बात कही और बोलो कुछ मुरली में, और कुछ भी था? देह भान और देह अभिमान। देह अभिमान का अर्थ होता है, जिसको बाबा ने कहा बहुत गहरा है, बहुत मैपन, अभिमान। और देह भान तो सिंपल भाई, हम देह में रहते हैं, देह का भान हो गया है ज्यादा, अब आत्मअभिमानी हमें बनना है, ये तो हमारी प्रैक्टिस है। पर अहंकार को छोड़ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वो भी हमें करना है। तो बाबा के दिल तख्त नसीन कौन बनेंगे? लेकिन इससे पहले हम थोड़ी चर्चा कर दें। सुख शांति और प्रेम की किरणें फैलानी है संसार में, कैसे? थोड़ी थोड़ी देर भी करेंगे प्रेम की किरणें। पहले तो हम अपने चित्त में सभी के लिए अलौकिक प्यार पैदा करें, तब हमारी किरणें उन तक जाएंगी। मनुष्य ने अपनी बुद्धि में दूसरों के लिए, अपनी वृत्ति में दूसरों के लिए क्या क्या रख लिया है? बहुत कुछ गंदगी, नफरत, वैर भाव, बहुत ज्यादा ईर्षा द्वेष, निगेटिविटी, व्यर्थ, अवगुणी दृष्टि पर चिंतन, प्रदर्शन, बहुत कुछ भर लिया है। उससे हमारे प्यार के वाइब्रेशंस दूसरों को नहीं पहुंचते। आप अपने घर में बैठ के संकल्प करें, सर्व आत्माएं बहुत अच्छी हैं, हम सबको बहुत प्यार करते हैं, सब हमारे अपने हैं, सब महान हैं। वो तो कलयुग में आ गए ना, तो तम प्रधान तो सब बन ही गए, हम भी और वो भी, लेकिन सभी बहुत अच्छी आत्माएं हैं। ऐसा संकल्प करने से हमारे प्रेम के वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचते रहेंगे। व्यवहार में भी ऐसे ही हमें, हमसे दूसरों को फीलिंग होगी इनका हमसे बहुत प्यार है। हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें प्यार की फीलिंग होगी। जैसे बाबा आते हैं, सकार में आते थे पहले, बहुत लोग अलग अलग अनुभव करते थे, बाबा बैठे हैं, सभा तो बड़ी बड़ी होती थी, कभी 20,000, 25, 28, 30। कोई कहता था आज बाबा का स्वरूप बहुत प्यार का था, बाबा प्यार का सागर बनकर बैठा था आज। अब बाबा ने प्यार की कोई बात भी नहीं कही, लेकिन बाबा को एक नेचुरल वृत्ति है ना, सब मेरे बच्चे बैठे हैं, ये सब देवकुल की महान आत्माएं हैं, फिर से ये मेरे पास आ गए हैं अपना खोया हुआ राज भाग लेने के लिए। तो प्यार की फीलिंग उसके कारण हमें भी आती है। तो जैसी वृत्ति वैसे वाइब्रेशंस दूसरों को प्राप्त होते हैं, वृत्ति इसको कहते हैं। समझ गए ना वृत्ति क्या है? बाबा की वृत्ति है सबके लिए, ये सब बहुत अच्छी आत्मा है, सब देवकुल में थे, कितने पावन थे ये, फिर आ गए हैं मेरे पास वैसा ही बनने। ये वृत्ति, यानी सरल हिंदी में इसको कहते हैं दृष्टिकोण, एटीट्यूड्स, इससे वाइब्रेशंस बनते हैं। अब हमें योग में सबको प्यार की सकाश देनी है, तो एक सिंपल अभ्यास करेंगे। मैं ग्लोब के ऊपर हूं, प्रेम स्वरूप हूं और सभी आत्माओं से मेरा बहुत प्यार है, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, तो वो किरणें प्रेम की अनुभूति कराएंगी दूसरों को। सुखों का अनुभव कराना है तो हमें पहले स्वयं को सुखों का भंडार बनाना होगा, नहीं तो हमसे कुछ जाएगा नहीं। अगर हमारा अपना मन दुखों में होगा, अगर हमें ही सुखों की तलाश होगी, तो दूसरों पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। हम अपने को ईश्वरीय सुख से भरपूर करें और फिर अभ्यास वही करें, मैं ग्लोब के ऊपर, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ और बाबा की किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। तो हमारी किरणें, बाबा की किरणें सुख का रूप लेकर संसार में फैलेंगी। तीसरा शांति, सहज विधि। पहली तो वही बात के लंबा काल हमने अपने चित्त को शांत रखा हो, अच्छी शांति जीवन में आ गई हो, चलो कभी कभी हो जाए गड़बड़ वो भी अलग बात, लेकिन लंबा काल हमारा जीवन शांति में बीत रहा हो, एक बड़ा सब्जेक्ट है। दुनिया में तो शांति लोगों के पास नहीं है, धन भी है, परिवार है, अच्छे काम धंधे हैं, पर शांति नहीं है। अच्छे अच्छे परिवार वाले भी हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं जो साधारण लोग हैं वो ज्यादा सुखी हैं, पैसे वाले कई लफड़ों में उलझ गए हैं, किसी को नींद नहीं आती, कोई सट्टे में पैसा लगाता रहता है, सब जाता रहता है। अब सट्टा ऐसा खेल है उसमें सबके डूबते रहते हैं, मुझे नहीं लगता किसी को मिलता होगा। जितने भी सट्टे वाले आते हैं कहते हैं हमारा इतना डूब गया, फिर लगाते हैं अब क्या आ जाएगा, फिर डूबा, फिर लगाएंगे इस बार तो आ ही जाएगा, फिर डूब गया, और वो ही डूब जाते हैं। माता हैं दो चार तो हर रूप में आ जाती है, मेरा पति या मेरा बेटा सट्टे में पैसा लगाता है और बिल्कुल कर्जदार हो गया है, हमको खाने को भी नहीं रहा। मैं पूछा कितना कमाता है कि सैलरी तो बहुत है पर घर में कुछ नहीं आता, सब सट्टे में जाता है। तो देखो एक व्यसन ने कितने परिवार को भूखा कर दिया, अशांत कर दिया है। अब वो इस आदत को छोड़ भी नहीं पाते। अब माताएं बेचारी कई भोली भी होती हैं, उनके अधीन भी होती हैं, डरती भी हैं पति से, कुछ कह नहीं सकती, तो बहुत मुश्किलात में आ जाती है। ना बच्चों को पढ़ा सकते, ना खान पान का अच्छा प्रबंध कर सकते हैं। फाइनल तो यही कहना पड़ता है बहुतों को। आज एक ग्रुप आया, हर एक के परिवार में बाधाएं बाधाएं, योग उनका लगता नहीं। अब बिना योग लगे बाधाएं कैसी जाएंगी? बार बार कहें भाई जी हमारा योग तो लगता नहीं। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, 2025 के बाद देखो, 30-32 तक सारा खेल पूरा हो जाएगा, मस्त रहना। अब हो जाने तो जो हो रहा है। माताएं सुन रही हैं, ज्यादा परेशान न हो जाओ। अगर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने में लग जाएं, तो बोलो, अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग जाएं तो, माताओं को उत्तर देना है, बोलो, आप जानते हैं, छोटी सी बात है, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याओं का गायन करेंगे, बहुत समस्याएं। कहते हमने तो बाबा को भी लिख के दे दिया, भोग भी लगवाया बाबा को, पर कहीं सुनवाई हो नहीं रही, भगवान भी नहीं सुनता है। अबे कर्मों का खाता ही बहुत कड़ा है, तो प्रभु जी ऊपर बैठ के क्या करे, किस किस का माफ करेंगे? अब किया हमने, भोगेगा कोई और थोड़ा ही। या तो योग से सब कुछ ठीक करो, दूसरा है पुण्य आत्माएं बन जाओ। अब भी लोग बहुत पाप करते रहते हैं, ये सब होते भी पाप का काम चलता रहता है बहुत। इसलिए परेशान न होकर थोड़ा थोड़ा भी अच्छा पुरुषार्थ करो, और नहीं तो यज्ञ की सेवा करो। जैसे आप यहाँ यज्ञ में सेवा में आए ना, सेंटरों में भी सेवा होती है, सेवा में लगे तो पुण्य जमा होगा और उस पुण्य से अनेक विघ्न अनेक बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। तो शांति के वाइब्रेशंस भी ऐसे ही देने हैं, ग्लोब पर बैठकर मैं आत्मा पीसफुल शांत हूँ, या और अच्छा एक शब्द है पीस हाउस हूँ, जो इंग्लिश जानते हैं, शांति की भंडार हूँ, बाबा से शांति के सागर से शांति किरणें आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ये काम हमें बहुत बहुत अच्छी तरह करने हैं। जो कुछ हम संसार को देंगे, बोलो आगे, वही वही गुण हमारा बढ़ता जाएगा। सुख का दान करेंगे, सुख बढ़ते जाएंगे, परिवार में भी। एक आत्मा का सुख भी पूरे परिवार को सुखी कर सकता है। तो शांति भी देते चलें, व्यवहार से भी, व्यवहार से सुख भी देते चलें, और प्यार तो व्यवहार में ही दिया जाता है बहुत ज्यादा। तो व्यवहार में भी और योग से भी, तो हमारी ये तीनों तरह की सकास संसार में पहुंचती जाएगी, अनेक आत्माओं को फायदा होने लगेगा। और इसमें क्या चीज है, एक बात मैं आपको कहूं बाबा की, कुछ साल पहले जब अव्यक्त बाबा आते थे, नीचे मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग होती है, वार्षिक मीटिंग, तो बाबा का उसमें संदेश मंगाया गया गुलजार दादी से। तो बाबा ने एक संदेश में तो कहा, सकास देने की सेवा शुरू करो, बहुतों को इंतजार है तुम्हारी सकास की। दूसरे में कहा, अब तुम सकास दे रहे हो, उन्हें ये पता चल रहा है कि कहीं से हमें सकास आ रही है, किरणें आ रही हैं। फिर आगे कहा, थोड़े दिन में उन्हें ये पता चल जाएगा ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, किससे आ रही हैं, हमें पहचानेंगे। और ये सूक्ष्म रूप से कार्य बहुत अच्छा होता है। अब चलें, सभी चिंतन करें, हमें भगवान के दिल पर चढ़ना है। चढ़ना है या नहीं, या ऐसे ही ठीक है, क्या राजा ही लेके करेंगे? चढ़ना चाहते हैं, अब बताओ कौन दिल पर चढ़ेगा बाबा के? बोलो, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें जटिलता, कोई बहुत गहराई हो ऐसा कुछ नहीं है, मामूली प्रश्न है। बोलते जाओ, भाई लोग बोलो, ठीक बोल रहे, और कुछ बोलो। आपके दिल पर आपके कौन से बच्चे रहते हैं? अब तो क्लियर है, जो लड़ता झगड़ता हो वो भी रहेगा, जो बुरे संग में रहता हो वो रहेगा, जो शराबी हो वो, जुआ खेलता हो। कई माताएं तो इतनी पावरफुल हैं, सब तो नहीं होती, हो भी नहीं सकती। बच्चा रात को 12 बजे आता है, बुरे संग में रहता है, बता दिया एक दिन 10 बजे के बाद आओगे तो हमारा दरवाजा बंद रहेगा। आया 12 बजे, द्वार खोला ही नहीं, कहीं भी जाओ। अगले दिन से अकल ठिकाने आ गई। लेकिन माताओं में ताकत चाहिए। पति भी गड़बड़ करता है, समझते हैं ना कौन सी गड़बड़, उसको भी कह दिया 9 बजे यहाँ पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो खैर नहीं तुम्हारी। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, एक दिन 12 बजे आया, दरवाजा बंद, नहीं खुलेगा, कहीं भी जाओ। ठीक हो गई बुद्धि, अगले दिन से 9 बजे आने लगे। लेकिन मैं जानता हूं सभी माताएं ये नहीं कर सकती, मोह भी होता है और कई डरती भी हैं। समाज का भी डर रहता है, पड़ोसियों का भी डर रहता है। तो सोचो, अभी बाबा के दिल पर हमें चढ़ना है। कौन चढ़ सकते हैं, कौन नहीं चढ़ते, कौन नहीं चढ़ते पहले वो बात निकाल लें। जो यज्ञ में विघ्न बहुत डालते हैं, जो बाबा की अवज्ञाएं बहुत करते हैं, जिनके द्वारा बाबा का नाम बदनाम होता है, जिनमें अभिमान बहुत है, जो ईश्वरीय आज्ञाओं को वैल्यू देते ही नहीं, बाबा कुछ भी कह रहा हो कहते रहो, हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, ऐसे भी कई महारथी हैं, सुनते आ रहे हैं और कहते बाबा का काम तो कहते रहना है, ये नहीं हो सकता। ऐसी आत्माएं दिल पे नहीं चढ़ती। एक बाबा का स्लोगन है बहुत अच्छा, सत्यता, बोलो, आधा मैंने बोल दिया है, बोला, ठीक बोला, बोलो, सच्चे दिल पर साहब राजी, तो जो गड़बड़ करते हैं इसके विपरीत उन पे साहब राजी नहीं होता। करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, ऐसों की भी कमी नहीं है, बहुत हैं ऐसे। इसमें एक विशेष बात कल बाबा ने और कही, इस गुह्य रहस्य को स्पष्ट करने के लिए, कि जो दिल तख्त नशीन है उनकी यादगार, अब आपको बोलना, मैंने बोल दिया, सारे बोल दिया, बोलो, माला बनी हुई है। एक एक मणके को, जो पहले, आजकल तो ऐसे ही घुमा देते होंगे लोग, लेकिन जब भक्ति सतो प्रधान थी, एक एक मणके को वैल्यू देते थे, चूमते थे, सिर पे लगाते थे, मस्तक पे, जैसे बहुत सम्मान देते थे। तो ये उनकी निशानी है जो दिल तख्त नसीन बनते हैं। अभी सोचो, हमें दिल तख्त नसीन बनना है, पहली इम्पोर्टेंट चीज, जो बाबा के काज संवारते हैं। समझते हैं काज, कुर्ते पे लगने वाला काज नहीं, काम संवारते हैं, उसके कार्य संवारते हैं। जैसे हनुमान के लिए उसके गीतों में भी आता है ना, सिया राम के काज संवारे। जो शिव बाबा के काज संवारते हैं, उसके कार्यों में अपने को अर्पित कर देते हैं। अर्पणता के दो अर्थ हैं, एक तो जैसे बहुत सारी बहनें भाई समर्पित हो गए, एक वो, दूसरा उसके कार्यों को पूर्ण करने के लिए जैसे अपना बलिदान कर देना। जो कार्य मिला है किसी भी कीमत पर उसे पूर्ण करना ही है, चाहे हमें कष्ट हो, चाहे हमें कष्ट हो। ये नहीं, ऐसी हो तो सेवा करें, एसी, जानते हैं एसी, एयर कंडीशन, जानते हैं, वो कहते हैं ये सुविधाएं हों तो सेवा करें। बाबा के समय भी ये बात आती थी साकार में, बाबा गर्मी बहुत है, अब प्रदर्शनी नहीं लगा सकते, मुश्किल होता है। बाबा उदाहरण देते थे, खेतों में जाओ, कितने किसान उसी धूप में काम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो बाबा के कार्यों को पूर्ण करने के लिए सर्वस्व लगा देने वाले उसे अति प्रिय हैं। और ऐसा नहीं कि सर्वस्व लगा दिया तो उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, यहां उनके यहां भी भंडारे भरपूर रहते हैं। इसलिए पहली क्वालिटी बाबा के कार्य पूर्ण करने वाले, दूसरा कम से कम 10 निकालेंगे हम और आपको निकलवानी है, श्याम भाई बोलो, दूसरी उनकी दूसरी क्वालिटी जिन्हें भगवान बहुत पसंद करता है, भोले चालाक नहीं। भोले मुरलियां आती रहती है ना, कुछ दिन पहले भी आई है, चालाक आत्माएं भगवान को प्रिय नहीं है, जो सिंपल है, भोले माना बुद्धू नहीं, सिंपल हैं, जो अंदर बाहर एक समान है, जिनके मन में छल कपट कुछ भी नहीं है, ऐसी आत्माएं भगवान को आकर्षित करती हैं। और कौन आकर्षित करता है उन्हें? और ये दो हो गई, अब तीसरी पर आओ, श्रीमत में तो सब आ जाएगा, श्रीमत की चर्चा कर रहे हम, बोलो। और ये भी बातें ठीक है, हाँ, बाबा की जो आज्ञाएं हैं इनको हम आज्ञाएं कहेंगे, श्रीमत तो सारे दिन की दी है बाबा ने, कुछ आज्ञाएं भी दी हैं। जैसे बाबा जब आते थे, जो पुराने हैं उन्हें याद हो, बाबा ने काम दिया, दुआएं दो, दुआएं लो, 15 दिन इसका अभ्यास करो, तुम्हें कोई एक बद्दुआ देता है तुम 10 दुआएं दे दो। कई वहीं भूल गए, जिन्होंने किया क्या मिला होगा उन्हें? भगवान की दुआएं, जो बहुत बड़ी चीज है। बाबा ने काम दिया, 5 स्वरूपों का अभ्यास, सारे दिन में 8 बार करना, कोई तो 8 दिन भूले ही रहे कि कुछ करना भी था, याद आया तो एक बार किया, फिर शाम को ही याद आया, तो ऐसी आत्माएं उसके दिल पे चढ़ेंगे। तुरंत बाबा ने जो कहा करने को, वो जो तुरंत करते हैं, उन्हें रिटर्न में बाबा का बहुत बल मिलता है, उन्हें पसंद करता है भगवान। देखो उसके तीनों रूप ध्यान दो, बाप, टीचर, सदगुरु। टीचर किन स्टूडेंट्स को पसंद करेगा? जो होमवर्क अच्छी तरह करके आए, और जो कुछ करें ही नहीं, पढ़े ही ध्यान से नहीं, वो प्रिय नहीं होंगे। तो ऐसे ही पांचवी बात, पढ़ाई। पढ़ाई से बहुत प्यार, पढ़ाई का अर्थ ये नहीं होता, कई इसका अर्थ नहीं समझते, सोचते हैं मुरली बहुत बार पढ़ लो ये हो गया पढ़ाई से प्यार। ठीक है, बहुत बार पढ़ना भी अच्छा है, लेकिन पढ़ाई से प्यार कुछ और चीज है। जो कुछ बाबा ने कहा उसके गहरे अनुभव करना, मुरली मिस ना करना, मुरली खींचती हो, मुरली सुख देती हो, पढ़ाई से प्यार, धंसा हो कौन पढ़ाने आया है, ऐसी आत्माएं बहुत प्यारी लगती हैं बाबा को। कौन सी आत्माएं आकर्षित करती हैं उसे? फिर वही क्वेश्चन, जो बहुत पवित्र हैं, जो बहुत पवित्र हैं, वो आत्माएं बाबा को बहुत आकर्षित करती हैं और पवित्र आत्माएं ही भगवान के दिल तख्त नशीन होती हैं। पवित्रता की फाइनल परिभाषा सभी समझ लें, जिनका मन हर तरह के व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो गया, चाहे वो ईर्ष्या के हों, चाहे परचिंतन के हों, चाहे आलस के कारण हो, चाहे मोह के कारण हो, चाहे अभिमान के कारण हो, ये सब अपवित्रता में आता है। क्योंकि अगर किसी के पास स्थूल प्योरिटी बहुत अच्छी भी हो, कई लोग होते हैं एक बार ब्रह्मचर्य धारण कर लिया कोई हाथ नहीं लगा सकता, स्ट्रिक्ट रहते हैं, पक्के भी रहते हैं, लेकिन व्यर्थ बहुत रहता है, ईर्ष्या द्वेष तेरी मेरी, तो इस व्रत व्यर्थ से क्या होता है, जो पवित्रता की शक्ति होनी चाहिए वो नष्ट होती जाती है। तो जो कल बाबा ने कहा, सब कुछ चेहरे और चलन से दिखाई देना चाहिए, आगे आने वाले समय में इन्हीं के द्वारा बड़ी सेवाएं होंगी, बहुत बड़ी सेवा, क्योंकि हमारा सब कुछ हमारे चेहरे पर आता जाएगा, हमारा आभा मंडल बनता जाएगा वैसा ही, और बड़ा होता जाएगा, आकर्षक होता जाएगा। आगे चलें, कौन भगवान को बहुत प्रिय हैं, बाबा की मुरली से, जो सबको बहुत सुख देते हैं, सुखदाई बच्चे भगवान को बहुत प्रिय हैं। भक्ति में शास्त्रों में भी कहीं कहीं कहानियां बनाई हुई हैं, फलाना भक्त भगवान की बहुत भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, नियमित रूप से करता है, धन भी लगाता है धर्म पर, लेकिन भगवान के की लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। क्यों? ये अगली पॉइंट है, भगवान के दिल को कौन जीतेंगे, अहंकार है, ये भी है एक कारण। और बोलो, ठीक है, ये उत्तर भी है। बाबा की मुरली में एक चीज बहुत आती है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है, बहुत भक्ति हो, कोई बहुत शास्त्र पढ़ता हो, कोई चारों वेदों का विद्वान हो, लेकिन कर्म उसके श्रेष्ठ न हो, भगवान की लिस्ट में उसका भी नाम नहीं होता। इसी को बाबा दूसरा भी कहते हैं, कोई योग भी बहुत करता हो, मुरली भी बहुत अच्छी पढ़ते पढ़ाते हो, सेवा भी बहुत अच्छी करते हो, लेकिन व्यवहार दुखदायी हो, मुख से कड़वे वचन निकल जाते हो, वो भी भगवान को प्रिय नहीं है। सब उसके बच्चे हैं और वे चाहते हैं मेरा हर बच्चा हर बच्चे को सुख दे। पहले आत्माओं को दुख बहुत है और दुख देंगे भारी पड़ेगा, इसलिए हम दूसरों के दुख हरने वाले बन जाएं। अब वो दूसरी बात भी जो मुरलियों में आती रहती है, जो बाबा की बहुत सेवा करते हैं वो बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं, तुरंत जो करते हैं, बाबा ने कहा ऐसा बड़ा बोर्ड बनाओ, वो तुमने तो सुना और पूरा हो गया, कोई आप सब नहीं बनाएंगे, लेकिन जो जिम्मेदार होते हैं सेंटरों में, लेकिन बहुतों को होता है बाबा ने कहा है तो हमें बनाना है। जब बाबा की ये मुरली चलती थी ना, प्रश्नावली बनाओ, आजकल में भी थी ये प्रश्नावली, पतित पावन कौन, गीता ज्ञानदाता कौन, ये प्रश्न होते थे 8-10, तो ऐसी लहर चली थी, सभी ने बना दी थी, बहुत अच्छी अच्छी बना दी थी, तो बाबा खुश होते थे। एक बार बाबा ने कहा 101 दुखों की लिस्ट बनाओ, दुनिया में जो दुख फैले हुए ना 101, लग गए लोग बहुत सारे, यहाँ वाले भी लग गए, जो अच्छे स्टूडेंट हैं एक दो दिन में बना दी, दो तीन ने बैठ के और 101 दुख लिख दिए। बाबा बहुत खुश होता था कि जो मैंने कहा इन्होंने तुरंत किया। तो इस तरह हम भगवान के दिल तख्त को जीत सकते हैं। तो सारी बातें आ गई, योग युक्त आत्माएं भगवान को बहुत प्रिय होंगी, पवित्र आत्माएं उसको बहुत प्रिय होंगी, आज्ञाकारी उसको बहुत प्रिय होंगे, सुखदाई बच्चे सच्चाई सफाई में रहने वाले उसको बहुत प्रिय होंगे, वो उसके दिल तख्त पर होंगे। और जो उसके दिल तख्त पर होंगे उन्हें क्या फायदा होगा? हाँ, एक बात यह, उन्हें बाबा की बहुत मदद मिलेगी और योग भी सहज हो जाएगा। बहुत अच्छे उत्तर हैं, और बोलो। उन्हें बाबा का प्यार मिलता रहे, सुख समय मिलता रहेगा, सवेरे भी विशेष रूप से अनेक अनुभूतियां बाबा की ओर से ऐसी आत्माओं को मिलेंगी। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, आपको याद आ जाएगी, जो हर श्रीमत पर जी हजूर करते हैं बाप भी उनके आगे हाजिर रहता है। तो जब भी बुलाएंगे उसकी उपस्थिति अनुभव करेंगे, उसकी मदद का बहुत अच्छा अनुभव होगा। ध्यान देंगे सभी, प्रकृति तख्त नसीन, सोच लो इसका अर्थ, प्रकृति के भी मालिक। सतयुग में तो हम प्रकृति के मालिक हैं ही, पर यहां प्रकृति के मालिक का क्या अर्थ है? ठीक बोल रही, बोलो पूरा बोलो। ये शरीर भी हमारी प्रकृति है। अब इस प्रकृति में कई बाधाएं आती रहती हैं, बीमारियां होती रहती है, अभी आजकल तो बढ़ती जाती हैं बीमारियां, लेकिन शरीर की प्रकृति की कोई भी स्थिति हमारी वास्तविक स्थिति को नष्ट न करे, बल्कि हमारी श्रेष्ठ स्थिति का प्रभाव हमारी शरीर की स्थितियों पर पड़े, बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। मुझे एक अनुभव सुनाने का ख्याल आ रहा, अनुभव बहुत हो गए बाबा की मदद के, अभी अभी 4 दिन पहले की बात है। मैं कहीं था तो मुझे हो गए लूज मोशन रात को, 2 रात को, अब भट्टियां चल रही हैं, क्लास करानी है, जिनको लूज मोशन का अनुभव है वो जानते हैं शरीर का क्या हाल होता है। सवेरे से प्रोग्राम चालू हुए, एक सेंटर की ओपनिंग, वहां बड़ी क्लास, फिर दूसरी जगह गए, अब तीसरी जगह जहां भट्टी चल रही थी, 1 घंटा क्लास, 6 बजे से जाके 10 बजे तक हम वहां पहुंच गए। और मेरा हाल, खस्ता हाल, तन में ताकत नहीं, और उसका असर तो आता ही है दिमाग पर। मैं लेट गया, वहां एक रूम बना हुआ था हॉल के साथ, मैं लेट गया। मैंने बाबा को कहा, बाबा क्लास मुझे ही करानी है, 10 बजे का टाइम था, 10 ही बजे में लेट गया। उन्हें कहा मैं थोड़ी देर में आता हूं, और मुझे कितना अच्छा लगा, मुझे 3 मिनट नींद आ गई, पक्के घड़ी देख लो 3 मिनट, और उस 3 मिनट में पूरा ठीक हो गया, न थकान रही न लूज मोशन का कोई असर रहा। बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, ये छोटा सा अनुभव है, पर उस टाइम के लिए ये छोटा नहीं था, मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मुझे 1 घंटा बोलना है, 1000 लोग सामने बैठे हैं, वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छे अनुभव भी कराने। मैं ऐसा फ्रेश हो गया कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मुझे भी आश्चर्य लगा। पहले तो मैंने बाबा को, वाह बाबा वाह, आपको बहुत शुक्रिया, एक गीत है ना वो भक्ति में, मुझे बहुत प्रिय लगता है, तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। मैं सोचा सचमुच बाबा की जो लीला है, उसकी जो मदद करने की लीला है, बहुत वंडरफुल है। तो हम इस प्रकृति के पति बन जाएं, और वो कैसे बनेंगे? 2 अभ्यास, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं, देह की मालिक हूं, कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, बिल्कुल देह से न्यारेपन की अनुभूति, देह से न्यारापन, ये हो गए प्रकृतिपति। देह अलग, मैं अलग, स्वराज्याधिकारी। तो धीरे धीरे इस देह पर पूरा अधिकार होता जाएगा, कर्मेंद्रियों पर अधिकार। कर्मेंद्रियों के वश हम नहीं होंगे, ये कर्मेंद्रियां हमारे वश होंगी। कुछ पंथों में, कुछ संप्रदायों में एक चीज को बड़ा महत्व दिया जाता है, जीभ के रस को जीतना। दूसरी भाषा में कहते हैं स्वाद इंद्री, इसको जीतना कठिन है, सहज है? बोलो माताएं, चुपचाप बोल रही, धीरे धीरे। कभी सहज कभी कठिन। अभी खुशबू ही बहुत आ रही हो किचन से, फिर रोका जाना अपने को अति कठिन काम होता है। कहा देखा जाएगा, पीछे खाएंगे कुछ, हाजमे की दवाइयां खा लेंगे, क्या है कुछ होगा तो और गोली खा लेंगे, अब तो खा लो। कभी कभी तो बनता है, रोज थोड़ा ही बनता है। लेकिन ऐसे प्रकृति पर राज करने वाले प्रकृति पति बन जाएंगे, और जो इस प्रकृति पर राज करेंगे वो इस संपूर्ण प्रकृति के भी मालिक। विनाश काल में उन्हें अनुभव होगा, हम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हैं, प्रकृति हमें सुख दे रही है, प्रकृति हमें कष्ट नहीं पहुंचाएगी, प्रकृति हमारा विनाश नहीं करेगी, बहुत सहयोगी होगी। तो तीनों का अच्छा अनुभव सबको करना है। ओम शांति। प्रभु का ध्यान।